मानव है मेरे राम, ब्रह्मा जी से दशानन जुड़ गए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं दशानन की तपस्या से और कहते हैं मांगो वरदान, मांगो क्या चाहिए। बस यही फर्क है इतिहास में और पौराणिकता। That's the difference between the mythosphere and history. इतिहास में तथ्य है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रमाण है, और जो पौराणिकता चलती है वो श्राप और वरदान पर चलती है, और उसके जो करैक्टर होते हैं वो सुपर ह्यूमनिक होते हैं। हमारे आसपास ऐसे करैक्टर आज नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये फिक्शन है, गल्प है, गप है। और इसीलिए अंग्रेजों ने जो हमें इतिहास पढ़ाया और जो इतिहास दिया उसमें ये संदेश दिया कि इन सब बातों पर विश्वास न करो, ये तो पौराणिक चीजें हैं, पुराण में प्रतिबिंब है, सिंबॉलिज्म है, इन्हें समझना होता है मानवीय आधार। गलती उनसे होती है जो उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें भी कुछ तपस्या करके ऐसा मिल जाएगा। तपस्या का अर्थ क्या है? कर्म, कर्म की प्रगाढ़ता। और जब कर्म में प्रगाढ़ता आती है तो परिणाम भी बड़े आते हैं, यही तो वरदान। वरदान मांगा दशानन ने रावण में, मांगा वरदान ब्रह्मा से, अमरता का वरदान। क्या मांगा वरदान? कि देवताओं, राक्षसों, गरुण, नाग, यक्ष आदि के लिए वो अबद्ध हो जाए, अबद्ध हो जाए, कोई उसे मार न सके। और ब्रह्मा ने इस वरदान को स्वीकृत कर लिया। दशानन ने अहंकार के कारण मानव से अबद्धता नहीं मांगी मेरे राम, छोड़ दिया कि मानव तो क्षुद्र है, ऐसा भूलवश नहीं किया था दशानन, क्योंकि दशानन को अपनी अपरिमित शक्ति का एहसास था। एहसास ही नहीं, अहंकार था कि मानव तो उसका वध कर ही नहीं सकता है, तो उससे अबद्धता का वरदान क्या मांगा। इस प्रकार से रावण ने अपने लिए ही ब्रह्मा से जो वरदान मांगा वो अर्ध अमरता का था, वो पूर्ण अमरता का वरदान था ही। जब तपस्या कर रहा था दशानन ब्रह्मा के लिए तो अपने नौ सिर ब्रह्मा को काट काट करके, काट काट करके अर्पित कर दिए थे। ब्रह्मा ने वो पूरे नौ सिर भी वापस कर दिए। और अब ब्रह्मा के इस वरदान से रावण की सामर्थ्य अत्यधिक बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे। एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय जय मानव मंदिर राम,
जय जय
मानव राम। अब बिन बिना युद्ध के ही मिल जाएगी श्रीलंका दशानन। अब दशानन स्वयं को प्रमाणित करना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना था, अपने नाना सुमाल की कल्पना को साकार करना था। दशानन ने भेजा दूत अपने सौतेले भाई वैश्रवण को कि वो श्रीलंका छोड़ दे और दशानन को दे दे। वैश्रवण दशानन की बढ़ती हुई सामर्थ्य और क्रूर कर्मा प्रकृति से परिचित था, है तो भाई ना, भले ही सौतेला से, इसलिए वैश्रवण ने श्रीलंका सौंप दी दशानन को बिना किसी युद्ध के। वैश्रवण युद्ध नहीं चाहता, उसे अपनी दूसरी सामर्थ्य पर भरोसा था, अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य पर भरोसा था और लंका के लिए कोई विशेष आकर्षण भी नहीं था। वैश्रवण में दे दी लंका, भाई को दे दी, भैया तू ले जा। आसानी से मिल गई दशानन को लंका, उसे कोई युद्ध नहीं करना। अब इसीलिए दशानन को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही नहीं पाया, मजा नहीं आया। ये क्या है, मैंने कहा और इसने दे दिया, ना संघर्ष है, ना युद्ध है, ना शक्ति का प्रदर्शन है, तो शक्ति का लाभ क्या? और उधर क्या होता है, वैश्रवण चले जाते हैं देव और देवताओं के कोषाध्यक्ष बन जाते हैं और कुबेर कहलाते हैं। उनका निवास, कुबेर का निवास यक्षों की राजधानी अमरापुरी में ही स्थापित हो जाता है। मेरे राम, कुबेर क्यों हुए कुबेर, थोड़ा सा मैं नरेट करता हूं आपके लिए। जो लोक कला है, फोकार्ट है, उसमें कुबेर को कुत्सित शरीर का दिखाया गया। पौराणिक मान्यता यह रही है कि जन्म के समय इनका शरीर भीभत्स था, कुत्सित था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कुबेर। लेकिन फिर पिता के तप के प्रभाव से कुबेर सुंदर शरीर वाले हो गए और वैश्रवण कहलाने लगे। ऐसे थे कुबेर। देवलोक पहुंचकर ये पुनः कुबेर कहलाए, धन के देवता के रूप में स्थापित। लेकिन दशानन अभी संतुष्ट नहीं, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आया। तो दशानन क्या करता है कि यक्षों की राजधानी अमरापुरी पर आक्रमण कर देता है, कुबेर पर आक्रमण कर देता है और उनसे पुष्पक विमान छीन करके ले आता है। पुष्पक विमान बड़ा विशिष्ट था, यह विमान, विमान की विशेषता है पुष्पक की कि यह अपनी शक्ति से स्वयं संचालित होता है। आज के संदर्भ में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इस विमान के पास। अब आप सोचें मेरे राम कि जो आज विज्ञान से संभव है, क्या उस समय ये संभव नहीं हो सकता था? क्या ज्ञान का परिवर्तन उस समय विज्ञान के रूप में नहीं हो सकता था? इसे केवल मिथक मान करके टाल देना उचित नहीं। पुष्पक विमान में छीनने के बाद दशानन की जो रिएक्टिवनेस है वो बढ़ती जा रही है। दशानन लगातार अनवरत अभिजात्य वर्ग को चुनौती दे रहा है। तो पुष्पक विमान मिला है दशानन को, इसमें एक और बात, एआई इसका बहुत अच्छा है और ये मनोगामी है, अर्थात यात्री जो इच्छा करता है, जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता है यात्री, पुष्पक विमान पहुंचा दे, लक्ष्य भेदी है। जब ये विमान मिल गया है तो दशानन के अंदर का अहंकार अब उसकी पहचान बन गया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
मारे कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी लैया, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीत लैया, जीत लैया, जीत लैया।
मानव है मेरे राम। दशानन अब अहंकारवादी होता जा रहा है, अहंकारी नहीं है केवल, दशानन अब अहंकारवादी है। दशानन ने अहंकार को एक अवधारणा के रूप में वपित कर दिया है, कल्टीवेट कर दिया है और लोग भी मानने लगे हैं, लोग भी मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि अहंकार भी एक शक्ति है। ब्रह्मा के वरदान से स्वयं को अजेय मानने वाले दशानन को अभी और भी शक्ति चाहिए। अहंकार से शक्ति बढ़ा रहा है रावण अपनी, और साथ ही उसे शक्तिशालियों को चुनौती भी दे रही है। दशानन का जो व्यक्तित्व है, व्हाट्स द पर्सनैलिटी ऑफ दशानन, उसमें शक्ति के साथ अहंकार का मिश्रण, ये ऐसे ही हो रहा है जैसे कोका कोला में अगर सोडा ऊपर से डाल दिया जाए तो उसमें फेनिल झाग उठ जाता है। अहंकार व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाने में बड़ा कारगर भी होता है मेरे राम। हाँ, शक्ति जो सामर्थ्य में बदलती है, शक्ति अलग है सामर्थ्य अलग, शक्ति जब सामर्थ्य में बदलती है तो उसमें अहंकार भी एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, उसका एक उत्तेजक कारण बनता है। अहंकार के कारण व्यक्ति में खतरों से डरने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, वो डरता नहीं, अब डरना छोड़ देता है। डरता क्यों है आदमी किसी भी काम में? क्योंकि उसे भावी खतरे महसूस होने लगे। जब अहंकार ज्यादा होता है तो खतरा समझ में ही नहीं आता है। और मेरे राम, कई बार व्यक्ति अहंकार के कारण ही खतरों के पार भी चला जाता है। हाँ, पार कर जाता है खतरों के, अहंकार शक्ति के बूस्टर का काम करता है। ऐसे व्यक्ति बूस्ट करता है पावर। अहंकार शस्त्र बन रहा है, रावण का एक नया शस्त्र बन गया है और वो शस्त्र है अहंकार। अब रही पतन की बात, मृत्यु की बात, पराजय की बात, तो मेरे राम सोच के देखना एक बार, ये नया पैराडाइम है। बात अगर करें पतन की, मृत्यु की, पराजय की, तो ये तो सब उनके साथ भी घटता है जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है। सोचो मेरे राम, जो अहंकारी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, क्या वे पराजित नहीं होते? क्या दुख उनके जीवन में नहीं आता? क्या वे कभी हारते नहीं हैं? क्या अहंकारी न होने का कोई पुरस्कार उनको कोई ईश्वर देता है? बताओ, जरा सोच के बताओ, ढूंढो। ऐसा सोचता है दशानन, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोचता है कौन? दशानन। और अहंकार को अपना शस्त्र बना लेता है। रावण मानता है कि अगर शक्ति और सामर्थ्य होगी तो व्यक्ति में अहंकार तो होगा ही। अहंकार तो अधिकतर देवताओं और ऋषियों में, राजाओं में, सभी में है। इस वर्ग का कौन ऐसा है जिसमें अहंकार नहीं? मेरे राम, दशानन सोचता है कि अहंकार की आलोचना तो वही करते हैं जो शक्ति और सामर्थ्य से हीन होते हैं, जिनके पास होती ही नहीं है शक्ति, वो आलोचना करते हैं कि हम तो सरल सहज हैं। सुना है तुमने राम, लोग बोलते हैं चीप एंड बेस्ट। इस भौतिक जीवन में चीप बेस्ट क्या हो सकता है, ये भी सोच करके दे। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए रचे गए वाक्य, ब्रह्म वाक्य नहीं है ये। मानव ने, उस मानव ने अपनी परिस्थिति के अनुसार इन वाक्यों की रचना की है। एक बार ऐसे वाक्यों पर सोच करके देखना कि क्या ये सत्य है। निर्णय करना तुम्हारा अधिकार है। मेरी बात अच्छी लगे तो ले लो, ना लगे तो बाहर कर देना, एग्जिट कर देना, डिलीट कर देना। रावण से गलती ये हो रही थी कि उसे शक्ति और अहंकार के साथ एक और तत्व को जोड़ लिया है, एक और फैक्टर को ऐड कर लिया है, और वो है इमोरैलिटी, अनैतिकता। ये भी रावण के विचारों का ही परिणाम है कि उसने अनैतिकता को अपना आधार बना लिया, जीवन मूल्य बना लिया है अनैतिकता को। और उसे अनैतिकता में भी नैतिकता दिखती। अनैतिकता इमोरलिटी खराब क्यों है? इसलिए है कि अनैतिकता में पर पीड़न शामिल है, और इसीलिए अहंकार को भी खराब माना गया है कि उसमें भी पर पीड़न शामिल है, दूसरे को कष्ट देना इन दोनों में शामिल। और पर पीड़न ही पाप। वस्तुतः पाप क्या है? पाप की कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं। बीबी काणे साहब पांडुरंग वामन काणे, मैं गुरु के रूप में कान पर हाथ रख करके उनका नाम ले रहा हूं, इतना बड़ा कार्य आज तक किसी ने धर्मशास्त्र के लिए नहीं किया है। पाप की परिभाषा लिखते हैं वो काणे। पाप तो सबके अलग है। पाप का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? एक जैन धर्म का आदमी अगर सूर्यास्त के बाद भोजन करता है तो पाप। मेरे राम, तुम खाना खाते हो 8 बजे 10 बजे, मैं खाता हूं तो पाप नहीं। तो बताओ पाप की स्टैंडर्ड परिभाषा कैसे हो? सकट के मौके पर प्रतीकात्मक बलि तिल की चढ़ाते हैं हम, और पहले वास्तविक बकरे की चढ़ाते थे, तो क्या पाप? यज्ञों में बैलों की घोड़ों की बलि दी जाती थी, उस खंभे को स्तूप, उस खंभे को, उस पिलर को यूप कहा गया है, जिसमें लाकर के पशुओं को वैदिक काल में बांधा जाता था और उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। आज अगर ऐसी बलि हम किसी यज्ञ में चढ़ाते हैं तो पाप हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं। तो पाप तो समय सापेक्ष हो गया, टाइम रेलेवेंट हो गया। तब पाप था, आज नहीं है। राम के 3 मम्मियां हैं, दशरथ को क्या कोई पापी कहता है? मेरे अगर 6 पत्नियां हो तो तुम मेरी बात ना सुनो शायद। ये कैसा आदमी है, इसकी बात तो सुनेंगे नहीं, राम की बात कर रहा है और 6 पत्नियां हैं, तो मैं पापी हो जाऊं? तो पाप की परिभाषा स्टैंडर्ड है ही। पाप की कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं। कृष्ण के जो पापा थे वसुदेव, 14 पत्नियां थी, किसी ने पापी कहा तो बहुत क्या बताऊं तुम्हें मेरे राम। हां, एक पाप जब से सृष्टि का जन्म हुआ है और जब तक सृष्टि रहेगी वो पाप है। वो तब भी पाप था, वो आज भी पाप है, वो कल भी पाप रहेगा। जब हम स्वसुख के लिए पर पीड़न करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, छीनते हैं किसी से कुछ, तो वो पाप, दैट इज सिन। जब हम स्व हित के लिए नहीं, स्व सुख के लिए छीनते, हित और सुख अलग, तो वो पाप है। तो रावण ये विचार नहीं कर पाया कि उसका अहंकार और उसका अनैतिक आचरण, इमोरल करेक्टर पाप की तरफ बढ़ रहा है। यही रावण की भूल थी मेरे राम। अब अगली कथा जो होगी उसमें रावण का रावण नामकरण होगा, दशानन का नाम रावण होगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है।
बरनी न जाई अनीति भोर निसाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापिनी कवन मिति। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।